ओम शांति। मेरे प्रभु के लाडले, समय की पुकार है, एड़ी चोटी का जोर लगाकर पुरुषार्थ कर लो। आज का टॉपिक है एड़ी चोटी का जोर लगाओ। वर्तमान समय पुरुषार्थ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना चाहिए। जिस तरीके से समय हमें संदेश दे रहा, उस तरह से हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना होगा। जरा सोचो, समय के बारे में बाबा ने हमें बार बार मुरलियों में इशारा दिया है कि सब कुछ अचानक होना है, और हम सब देख भी रहे कि परिस्थितियां दिन प्रतिदिन कैसे बदल रहे हैं। देख रहे हो ना, अब लॉकडाउन हो रहा। इसलिए मेरे को याद आता है जब दादी चंद्रमणि का अव्यक्त, इस भौतिक शरीर त्याग कर अव्यक्त हुए, उस समय बाबा ने संदेश में एक क्लियर बताया। दादी को भी पता नहीं था, अचानक ऊपर गए, ये क्या हुआ। तब संदेश में बाबा ने क्लियर किया था, अचानक का पार्ट शुरू हुआ। अभी हम सब परिस्थितियां देख रहे, दिन प्रतिदिन ये महामारी जो चल रहा है करना का, हम इससे समझ जाना चाहिए। अभी हमारा जोर लगाकर पुरुषार्थ करना होगा। इसलिए बाबा के बच्चों को इतना सुंदर बाबा का ज्ञान मिला हुआ है कि हर पल हमको कैसे सफल करना है, कैसे सफल कर सकते। ये वरदानी समय है, इसलिए अपना स्टेज को भी वरदानों से भरपूर कर लेना है। ऐसा एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरा पुरुषार्थ करना है। इसमें बाबा की मदद और बाबा की दुआएं मिलती रहती है, समझा। आगे क्या नजारा आने वाला है, ये तो हम देखते ही रहेंगे। बाबा ने कहा है कि अभी तो छोटी छोटी रिहर्सल हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल छोटी है। अभी पांचों तत्व, पांचों विकार एक साथ अटैक होंगे तो प्रकृति, ये सब उस समय हमारा स्थिति क्या होगा। आगे चलकर बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हम क्या करना है, हमको देखना है। हम क्या करना है, अभी हमको देखना है। अब जो समय मिला है उसको एक एक पल कमाई करनी है, और दूसरों को भी रूहानी कमाई के लिए क्या करना है, प्रेरणा देना है कि उनको भी हमारा एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल बनकर उनको रास्ता दिखाना होगा। मेरे को याद आता है एक बार ओम शांति भवन जब बन रहा था, ओम शांति भवन में बन रहे, तो उस समय ओम शांति भवन के ऊपर छत के जो कैंची चढ़ाने का था, जो बड़ा कैंची था एकदम इधर कोने से उस कोने तक, उस कैंची को उठाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर बड़ी दादी जो प्रकाशमणि दादी जी ने खास वहां आके बैठ के सबको यही बोला कि लक्ष्य रखो, जोर लगाओ। जोर लगाकर सब एकजुट होकर शक्ति लगाकर ऊपर चढ़ा दो। दादी का हिम्मत और उस काम का स्वतः ही हो गया, माना कैंची चढ़ गई। और कैंची चढ़ने के बाद उसको कलर करने की था, कलर कैसे करेंगे, ऊपर कैंची चढ़ गए तो उस समय कलर करने की भी बहुत बात आई। मधुबन वालों का क्लास में दादी ने कहा कौन महावीर है ऐसा कलर करने वाला, ऐसे, क्योंकि उसको ऐसा नीचे से ऊपर तक इतना सीढ़ी तो बन नहीं सकती, मगर लटक के कलर करना होगा था। इसलिए उसमें जैसा महावीर शब्द सुनकर जोर लगाकर दादी ने जो शब्द बोला ना, जो महावीर, उसी समय पांच छह भाई जो पुराने हैं अभी भी है वो लोग हाथ उठाया, दादी ने यस किया। उसके बाद दादी खुद आई, जब ऐसे जोर लगाओ जो हो जाएगा काम, फिर एड़ी छोटी का जोर लगाकर वो लोग कैंची को उल्टा लटक के अपने को बांध कर कैंची से कलर किया। अर्थात ऐसे समय है, ये समय का महत्व जानकर जीवन को श्रेष्ठ बनाने का समय है। इसके लिए अपने स्टेज को वरदानी मूरत बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्या वरदानी मूरत बन सकते हैं? जरूर बन सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल दादियों को देखते हैं, दादियों के पास एक क्षण के दृष्टि के लिए क्यों भागते हैं? आज तो अभी आपने सामने एक मास हुआ दादी जानकी का अव्यक्त स्थिति होकर अव्यक्त वतन में पहुंच गई, वहां बैठ के सबको प्रेरणा दे रहे। ये समय है, समय को पहचानो, वरदानी मुहूर्त का अपना स्थिति को बनाओ। वरदानी मुहूर्त कब बना सकते, कैसे बन सकते, जरा सोचो। जो बाबा ने हमको जितने वरदान दिए हैं, हर रोज मुरली में अलग अलग वरदान देता ही रहता है, इतना ही नहीं है, ये समय है। अव्यक्त मुरलियां खोल के देखो, एक एक मुरली को पढ़कर अपने उसमें कोई ना कोई ऐसी वरदान को ले। मेरी याद है एक भाई को, एक अव्यक्त बाबा जब आया था उस समय एक भाई को वरदान दिया था, बेहद के स्थिति में स्थित होकर बेहद की सेवा करने वाले बेहद की काता का जमा कर सकते। क्या सचमुच बेहद की स्थिति होती क्या है? उस समय उस वरदान को अपना बनाने के लिए अपना निज जीवन में अर्थात निज धारणा में ऐसी कमाई करना होगा, बेहद की स्थिति में स्थित होना। बेहद की माना कोई भी प्रकार की हद की बातें हमको प्रभावित ना करे। आज भी बाबा ने बोला ना, शरीर का जरा भी याद नहीं आना है, याद की यात्रा से ही हम कुछ इस शरीर को भूल सकते हैं। बाबा तो है ये निराकार, मगर हम भी निराकारी वो स्थिति को वो अनुभव करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा। ऐसे वरदानों से हम भरने के लिए हमारे पास रोज उस समय को निकालकर उस वरदान को अपने जीवन में धारण करने का कुछ ऐसी चार्ट बनाना होगा। क्या सचमुच ऐसी वरदानी मूरत स्थिति मेरे अंदर बनी है या बन रहा है? कौन सी ऐसी बात मेरे वरदानी स्थिति को बनने नहीं दे रहा? हम एकांत में या अपने आप से बात करने से पता चलता है कि हमारे कौन सी पुरुषार्थ विघ्न डाल रहा या कौन सी पुरुषार्थ आगे बढ़ने नहीं दे रहा। कौन सी ऐसी पुरुषार्थ करने से हमारे अंदर वरदानों से जोली भर सकते हैं? बाबा ने तो दिया है, मगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में तब ला सकते हो जब अपना बाबा का जो श्रीमत है, श्रीमत अनुसार हम चलते हुए वो वरदान को अपना बनाएंगे। जैसा बाबा ने कहा, सफल करो तो सफलता पाएंगे। क्या सचमुच सफल कर रहे हैं हम हर क्षण हर पल? क्या हम ब्राह्मण जीवन में बनकर, ब्राह्मण बनकर या ब्राह्मण जीवन के अंदर हम ऐसे सफलता पा रहे हैं, या हमारा वही चाल है? क्या बाबा दिए हुए वरदानों को दूसरों को बांट रहा हो? जब वरदानी मूरत बन जाएंगे, आपका बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी, आपके नयन, आपके चलन, आपके बोल स्वतः ही सर्विस करती है। आपके पास एक एक आत्मा आएगी तो उस समय आप एक वरदान से ही उस आत्मा को संतुष्ट कर सकते हो। वरदान है, वरदानों को प्रैक्टिकल लाने के लिए हम अपना अंदर उसको ऐसी धारण करना है जैसा हम नेचुरल कोई एक्शन कर रहे, पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ उठाते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं कि हाथ उठाने के लिए, नहीं, वो नेचुरल उठता है। इसी तरह हम वरदानी स्थिति बनाना है, ये नहीं, ऐसा नेचुरल बन जाए हमारा दृष्टि, तब वरदान दूसरों को दे सकेंगे। वरदानी दृष्टि कब बन सकती है? जब हम नित्य जीवन के अंदर इस शरीर को भूलने का बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या बाबा ने, साकार बाबा ने कितना प्रैक्टिस किया था? यशोदा आत्मा, ब्रजेंद्र आत्मा, ये साकार बाबा को पता था, ये भी पता था मैं नंबर वन आत्मा हूँ, मैं ही कृष्ण बनूंगा, ये भी पता था, मगर फिर भी बाबा ने क्या किया? पुरुषार्थ किया। वो पुरुषार्थ से हम क्या सीखना होगा? हमको भी ऐसा पुरुषार्थी बनकर, वो भी साधारण पुरुषार्थी नहीं है, तीव्र पुरुषार्थी। अभी समय दिया है बाबा ने, इस भागम दौड़ी सर्विस के समय बाबा ने हमको विशेष ये समय दिया है, हम बी पॉजिटिव लेकर ये कोरोना वायरस जो आई है उससे हमको कितना, हम कितना सर्विस में भागम दौड़ी कर रहे हैं, तो एक भी भाई हमको समय नहीं मिलता योग करने। अभी तो बाबा ने हमको क्लियर बता दिया है कि आप जितना चाहो अभी पुरुषार्थ कर सकते हो। उसको हम पुरुषार्थ से हमारे जीवन के अंदर वरदानों से भर सकते हैं, भरने का ही नहीं दूसरों को बांट सकते हो। ये समय है, समय को पहचानो मेरे भाइयों, मेरे मीठे भाइयों, पहचानो अभी समय है। बाबा से मिली हुई खजानों को अपने झोली में सदा भर कर रखो, ताकि कोई भी हमारे पास आए तो उसको महसूस हो कि यह आकर हम भरपूर हो के जाए, उनको ये महसूस हो कि यहाँ आकर हम भरपूर होके जाए। इसीलिए स्वयं को गुणों से, शक्तियों से, प्राप्तियों से सदा संपन्न बनाकर जाओ, बनाकर रखो। किससे? गुणों से, शक्तियों से, प्राप्तियों से सदा संपन्न बनाकर रखना है। कैसे बनाएंगे? हमारे सामने एग्जाम्पल कौन है? अभी की दादी जानकी। दादी जानकी के पास कोई भी जाता था तो उनको क्या महसूस होता था? कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हम प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लिया? दादी जानकी शुरू से लेकर अपना हिस्ट्री में सुनाती थी। मैं बाबा को पूछा, बाबा मैं लेट आया हूं, मैं कैसे करूं? बाबा ने बोला, आप 8 बार 12 बार मुरली पढ़ो। माना इसका अर्थ क्या है? हम भी ऐसे पुरुषार्थ करें, मुरली को पानी की तरह बनाकर हम पी लेवे, अपना जीवन में धारण कर लेवे। ऐसा धारण जब करेंगे तब बाबा की एक एक गुण है, जैसा आज का गुण समझो, आप निर्भय होकर रहना है, आज की समय की परिस्थिति के अनुसार इस पर थोड़ा भी डरेंगे तो। अभी मैंने एक ग्रुप में देखा व्हाट्सएप में, अपने बहने ग्लोब को बीच में रखकर 7 बहने इकट्ठा बैठ के सातों गुणों का उन ग्लोब के ऊपर सकाश दे रहे थे। वो आज तक न्यूज में भी दिया गया कि इसी प्रकार हम अपने अंदर ये गुणों का, निर्भयता का गुण को अपनाने के लिए हम अपना निज धारणाएं जो पक्की होना चाहिए। कैसे? बाबा की जो श्रीमत है, सवेरे से शाम तक जो श्रीमत दिया हुआ है, उस श्रीमत को अपने जीवन में ऐसे धारण करे, कुछ भी मिस्टेक हो तुरंत बाबा से क्षमा मांगे, उसको दोबारा ना हो अंडरलाइन कर लेवे, क्योंकि अभी समय है। इसके बाद बाबा ने एक मुरली में कहा था, रमेश भाई से जब अव्यक्त बाबा मिल रहा था, कुछ बॉम्बे में हुआ था, उस समय बाबा को बोला ऐसा ऐसा हुआ। बाबा ने कहा, खिड़की भी खोल नहीं सकेंगे, दरवाजा भी खोल नहीं सकेंगे, अभी अपने सामने क्या हो रहा, प्रैक्टिकल देख रहे हम, यहाँ होते हुए भी अभी नक्की लेक तक भी जा नहीं सकते हैं, ये परिस्थिति चल रहा है। इसलिए हम ब्राह्मणों के लिए विशेष बाबा ने ये समय दिया है, विशेष संपन्न बनने का समय, गुणों से भरपूर करने का समय, शक्तियों से भरपूर करने का समय है। ये ये जब हम इस समय को सदुपयोग करेंगे, हमारे जीवन को परिवर्तन कर लेंगे, तो बाबा की, मैंने शुरू में बोला, बाबा की दुआएं मिलेगी, साथ साथ वायुमंडल बनेगी। वो वायुमंडल में जिस आत्मा को वो वायुमंडल टच करेगी, उस आत्मा का दुआएं भी हमारे खाता में जमा होगा। और तीसरी बात, उसमें ही हमारा प्रारब्ध जमा होता जाएगा। समझा, इतना गुह्यता है। हम एक स्थिति बनाने से एक ही बार में तीनों प्रकार की प्राप्तियों का अनुभूति करते रहेंगे। इसलिए हम यही पुरुषार्थ करें, हम कौन सा गुण में कमी है हमारे अंदर। जैसा मैं सिर्फ भय का, वर्तमान समय के अनुसार भय का बोला, इसी तरह सहनशीलता का है, निर्भयता का है, और अनेक गुण है। गुणों का एक नहीं है, लिस्ट निकालो, अपने सामने रखो। शक्ति, शक्ति रूप कैसे बने, शक्ति रूप कब बन सकते हैं, जरा सोचो। शक्ति रूप कैसे बन सकते हैं, कब बन सकते हैं? शक्ति रूप तब बन सकते हैं हमारे अमृत वेले का पावरफुल होकर बाबा से वो शक्तियों का अनुभूति करेंगे। और दिन में भी हम बीच बीच में टाइम निकाल कर भी अनुभव करना होगा। प्राप्तियां, प्राप्तियां क्या है, एक बार सोचो। हमारा सतयुग का एक बार सीन को इमर्ज करो, हम कितने प्राप्तियां वहां थे। यहां हम क्या दिया बाबा को, क्या दिया हम, दिया ही क्या हम, ये पुराना शरीर को दिया, सेवा में लगाया, मगर हमारा कितना, 21 जन्मों के प्राप्तियां पा रहे हैं। उस प्राप्तियों के सामने ये प्राप्तियां क्या है। अभी जो ब्राह्मण जीवन में हम भी, अभी भी कितना प्राप्तियां, स्थूल अभी ब्राह्मण जीवन में बाबा का बच्चा बनने के बाद क्या प्राप्तियां पा रहे हैं, जरा सोचो। क्या वैसी ब्राह्मण जो पहले था वैसी है, या प्राप्तियों से भरपूर हो रहे? ये तो क्लियर हमको पता चलता है कि हम प्राप्तियों से भरपूर होते जा रहे दिन प्रतिदिन। इसलिए हमको ये सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम भरपूर है या नहीं है, मगर करते चलो। गाड़ी जब पटरी पर चलना शुरू होता है तो पहुंच ही जाएगी, मगर उसके लिए हमको अंडरलाइन करना होगा कि अपना पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र गति से ही भी आगे बढ़ाना होगा। इसलिए गुणों को, शक्तियों को प्राप्तियों से संपन्न बनाकर रखना होगा, क्योंकि कोई भी आए, जैसा जानकी दादी जैसा, हम उनको भरपूर करके भेजना होगा। स्वयं को शक्ति, शांति की शक्ति से इतना पावरफुल कर ले, जो कोई भी तड़पती हुई, भटकती हुई, प्यासी आत्मा आए तो उन्हें एक सेकंड में शांति की अनुभूति करा सके। क्योंकि शांति की शक्ति इस समय अभी जो चल रहा, हरेक के अंदर भय, और हरेक के अंदर क्या होगा, ये चिंता है। भय चिंता से लोग तड़प रहे, अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, कल क्या होगा, यही सोच सोच कर हर रोज वो ही सवेरे उठते ही वो समाचार का टीवी खोल कर देखते, आज क्या हुआ, उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, हमारा क्या होगा। कोई के इसके कारण डिप्रेस में भी गए, कोई कोई एकदम तबियत उनका और ही दिन प्रतिदिन बिगड़ते गई। उनको कोई वायरस नहीं है, मगर इस चिंता के कारण वो हो रहा। इसलिए बाबा कहता है कि स्वयं को शांति की शक्ति से इतना पावरफुल बनाओ, बना लो, तड़पती हुई, भटकती हुई, प्यासी आत्माओं को एक सेकंड में शांति की अनुभूति करा सकते हो। जरा सोचो, करा सकते, कराया कौन? ब्रह्मा बाबा ने। ब्रह्मा बाबा के पास कितने बातों को आज बाबा से ये पूछने के लिए जाऊं, ये बातें बाबा से मैं जाके पूछूं, मगर बाबा के सामने जाते ही वो बातें भूल जाते थे, मगर उस शांति की, उस लवली अवस्था में खो जाते थे। बाबा बोलता नहीं था, मगर उस दृष्टि में इतना पावरफुल दृष्टि देता था, इतना शक्ति भर देता था, जो बातें सब भूल जाते थे, वो अनुभूति में खो जाते थे। इतना ही क्यों, चलो बाबा तो दूर की बात है, मगर दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी चंद्रमणि, मेरे याद आता है कि टिक्कन दादी बोलते थे जो कर्नाटक जोन की इंचार्ज है, वो दादी ऐसी क्लास कराकर एकदम उनको दृष्टि देते थे, वो लोग खो जाते थे। शुरू में टिक्कन दादी बाबा के पास रोती गई, बाबा ने आप आत्मा हो ये ज्ञान देकर उनको ऐसी पक्का कराया था। ऐसी दादी एक बार मैं तांडूर में जहां रहता था आंध्रा में, वहां आई थी दादी, क्लास कराया, मेरे को याद है वो दृष्टि, वो इतना पावरफुल दृष्टि दिया। हम दादी से क्या क्या बात करना चाहते थे कुमार होने के कारण, मगर वो दृष्टि ने सब कुछ उसमें समा कर माना, सब बातों का आंसर मिल गया था, वो शांति में खो गए। ऐसा भी देखा गया तो शांति कोई ऐसा नहीं है, हर एक को अनुभूति है, अज्ञानी को भी शांति का अनुभूति है। वो कहते हैं ना, कोई महान पुरुष शरीर छोड़ा है या कोई छोड़े तो 2 मिनट साइलेंस करो, 2 मिनट शांति से रहो, इसका अर्थ है कि शांति हरेक का अनुभूति है, मगर शांति के थले में जाना है, वो शांति के स्थिति को बनाना है। शांति के स्थिति को बनाने के लिए तड़पती हुई आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को बुझाने के लिए अपना अंदर ऐसी भरपूर खजानों से होगा तो कर सकेंगे। अभी हम ही अपना पुरुषार्थ को अभी भी हम कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं, वो बात ठीक है, मगर दूसरों को देने के लिए हमारा स्टॉक भरपूर है। जरा चेक करो कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे स्टॉक में कमी है। कई बार हम देखते थे मुन्नीबेन को, जो मुन्नीबेन या मधुबन के अंदर स्टॉक का इंचार्ज थी, कपड़ों का सब सामान का जो स्थूल में मैनेजमेंट की है, तो वो अगले साल तक सोचती थी ये अगले साल आएंगे तो वो कपड़ा ये मंगाना होगा, ये मंगाना होगा, इस तरह स्टॉक को भरपूर करके रखती थी। 6 मास कोई भी हो गए तो भी स्टॉक हमारे अंदर भरपूर हो। मेरे को याद है दादी हमेशा डायरेक्शन भेजती थी सेंटरों पे, 6 मास का सामान इकट्ठा रहे, हमारे पास कोई कमी नहीं हो, कोई भी कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो स्टॉक में कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए बाबा भी हमको कहते हैं कि अभी से, क्योंकि अभी ये छोटा रिहर्सल है, ये छोटा है वायरस, मगर आगे जाके बड़े बड़े परिस्थिति आ जाएंगे, एक साथ प्रकृति, पांचों विकार, पांचों तत्व हमारे परीक्षा लेंगे तो हम पास होंगे, होंगे जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे, हमारे साथ कौन है जरा सोचो, सर्वशक्तिवान बाप है, सर्वशक्तिवान बाप है। और हम कितना दिन से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई साधारण बात नहीं है, बहुत महान बात है, मगर हम भूल जाते अपने महानता को, अपने धारणाओं को, इसलिए हम हो नहीं सकेंगे, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये समंजस में रह जाते हैं। फिर भी बाबा कहता है यदि अटेंशन रखेंगे तो जरूर पहुंचेंगे, क्यों नहीं, आज नहीं तो कल तक पहुंचेंगे। हथौड़ी लग लग के मूर्ति का निकार आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, मगर हम वो पुरुषार्थ को जारी रखना होगा, हमारे अंदर सबको देने की भावना होना चाहिए, क्योंकि एक एक ब्रह्मा कुमार के पीछे, एक एक ब्रह्मा कुमार के पीछे 10 लोग आएंगे। आज भी हम देखते कई बहनों को हमारे घर में आके पांव रखो, कोई शरीर छोड़ा है तो हमारे घर में आओ, शांति का थोड़ा योग कराओ। इस तरह हम अभी से ही चल रहा तो आगे जाके हमारे पीछे कितना, एक एक ब्रह्मा कुमार या कुमारी के पीछे 10-10 लोग आएंगे। भाई जी एक क्षण का दृष्टि दे, एक महावाक्य सुनाओ, एक वरदानी हस्त हमारे ऊपर रखो, क्योंकि अभी देखो अव्यक्त बाबा का भी पाठ का कब तक चलती रहती है, मगर बाबा ये कहा कि अभी आप बाप समान बनकर वरदानी दृष्टि दो, तड़पती हुई आत्माओं को, प्यासी आत्माओं को प्यास बुझाओ, तड़पती हुई आत्माओं को ठिकाना दो, शांति का वरदान दो, शांति का स्थिति की अनुभूति कराओ। वो अनुभूति कब कराएंगे, जब हमारी ऐसी स्थिति हो, अभी समझो एक सेकंड में हम शांत स्वरूप हो जाएंगे, हमारा संकल्पों को एकाग्र कर सकेंगे, क्यों नहीं कर सकेंगे, जरूर कर सकेंगे, मगर उसकी फाउंडेशन क्या है, बाबा ने बताया क्या है, क्या है भाई बताओ, उसका फाउंडेशन है अमृत वेले का पावरफुल योग। इसलिए अमृत वेले का पावरफुल जितना योग करेंगे उतना हमारे अंदर जब नीम डालते हैं तो उसको सरिये से ऐसे टोकते हैं, उसको अच्छी तरह नीचे वो रेती वो कंकर सीमेंट घुस जाए, इसी तरह हमारे अंदर वो शांति की शक्ति का अनुभूति होती रहे, हम भरपूर होते जाए, तब जाके दूसरों को हम दे सकेंगे। भटकती आत्मा आपके पास आए तो उसको ठिकाना मिलेगा, वो इशारा मिलेगा, प्रभु को याद करो, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा आत्माओं का पिता है, वही ज्ञान सागर है, ऐसा ज्ञान उसके अंदर मिल जाएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर आपकी आंखें अपने आप काम करेगी, आपकी चलन से उसको महसूस होगा ये कोई हमारे लिए फरिश्ता है। इस तरह स्वयं की स्थिति को भी इतना पावरफुल बनाकर रखना है, इसके लिए सदा क्या चाहिए, अटेंशन रहे कि हम सदा विश्व के स्टेज पर एक्टर है, विश्व सारा हमको देख रहे, हमारा हर कर्म को संसार देख रहे, समझते हो, हम पूर्वज है, ये सुमान सदा याद रहे। पूर्वज को क्या करे थे लौकिक घर में भी, पूर्वजों को हमारा बाप दादा ने ऐसा कर्म किया, हमारा बाप दादा ने ये सिखाया, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, मगर यहाँ हमको बाबा क्या कहा, आप पूर्वज आत्माएं जड़ों में बैठे हुए, किसके, कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठे हुए, ऐसा हमारा एक एक कर्म को हमको सारा विश्व देख रहे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग करते समय थोड़ा सा भी मिस्टेक हो तो वो क्या करेंगे, कट, जो फिल्म निकालते हैं या वीडियो निकालते हैं वो क्या करेंगे, कट करो इसको, ये सीन को, ये सीन अच्छा नहीं है, फिर रिहर्सल करो, फिर करो, फिर करो। याद है जब बाबा का एक छोटा सा ड्रामा बना रहे थे, उस समय वो एक भाई था मधुबन का, रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक सीन को 10 बार उसने कराया, जब उसको संतुष्टि हुआ। यहां हमारा पार्ट को भी हरेक, हम विश्व गोले पर हम एक्टर है, एक्टर को सदा सारा विश्व देख रहा है, इसका एग्जाम्पल देखना हो तो हमारे सामने दादा विश्वरतन है। विश्वरतन दादा हमेशा यही कहता था, बाबा हमारे साथ बैठा है, बाबा देख रहा, हम ऐसा एक्टिंग करेंगे तो बाबा क्या समझेगा, बाबा से हम क्या सीखे, बाबा क्या कहेगा, बच्चे हमारा बच्चे होकर ऐसे करते हैं। इसलिए बाबा का हमेशा यही होता था, बाबा साथ है, बाबा देख रहा है, बाबा हमारे साथ रखने से हमारा एक्टिंग जो है वो परफेक्ट होगा। परफेक्ट कब होगा, परफेक्ट होने के लिए भी बाबा ने हमको क्या किया है, शुरू में बताया ना, श्रीमत अनुसार पूरा दिनचर्या को सेट करना होगा, जैसा हम दादा को देखते थे शुरू से लेके, दादा अमृत वेला एक्यूरेट 4 बजे संदल पे आके एकदम अलर्ट शेर की तरह आंखें रखकर सारा आकाश देता था, क्या सचमुच मेरा स्थिति ऐसी पावरफुल अटेंशन है, या पावरफुल स्थिति ऐसा बनाया है, हमको कोई भारी तो नहीं लगता है, बाबा तो हमको दिया है, बाबा ने कहा है कि आप विश्व के गोले पर बैठे हो, विश्व को साकाश आपको ही देना है, क्योंकि आप लोग कौन हो, आप लोग हो पूर्वज, ये बात को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जड़ों में बैठकर क्या होता है, आप वृक्ष कोई बढ़ना है तो उसको क्या करते हैं, पानी ऊपर नहीं डालते, उसको जड़ों में डालते हैं, जड़ों में कीड़ा ना लगे, जड़ों में पानी जाए, वो पानी लेवे, इस तरह हम जड़ों में बैठे हैं तो हमारे स्थिति का हर आत्मा देख रहे हैं, हमारे एक्टिंग का हर आत्मा देख रहे हैं, इतना अटेंशन है, एक बार गलती हुआ तो वो क्या होगा, वो शूट हो गई, 5000 बार के बाद फिर से ऐसे रिपीट होगा। इसलिए एक एक स्टेप, एक एक अनुभूति ऐसे अनुभव करो जो दूसरों को एग्जाम्पल बन जाए। दूसरे आज कहते हैं ना, भाई ये व्यक्ति ऐसा था, इनके कर्म ही याद आता है, कोई कोई कहते ये तो भले मर जाए,
क्योंकि क्या है, उनके कर्म श्रेष्ठ नहीं है। यहां बाबा ने हमको ऐसे एक्टर बनाया है जो एक्टिंग, ऐसी एक्टिंग करने के लिए, हमको एग्जाम्पल बनने के लिए बाबा ने बता दिया, प्रेरणा दिया है, आप ऐसा सैंपल बनो जो एक एक सैंपल देखते ही उस सेंटर पे आ जाए। ये सब सैंपल्स है, हम यहां बैठे हैं या सेंटर पे बैठे हैं या लौकिक कार्य कर रहे हैं, मगर हम एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर है, सारा संसार हमको देख रहा। ये अंडरलाइन जब कर लेंगे तो हमारा एक्टिंग परफेक्ट होगा। हमारे सामने दादा विश्वरतन को एग्जाम्पल लेइए, जो देखा हुआ होगा, उनसे मिला हुआ होगा, जरूर उनको ये अनुभूति हुआ है। हम तो, हम विशाल भवन हम संभालते थे, दादा वहीं रहता था, उसके कारण हर कर्म को हम प्रैक्टिकल देखते थे, उनकी कपड़ा रखने की, उनके भोजन करने की। वो दादा इतना तक बोलता था, थाली साफ करना है तो भी इतना प्यार से साफ करो, उसको ऐसा ना हो फट फट करके उसको जैसा तैसा करके रखना नहीं, कपड़ा रखे तो भी। दादी हमको एग्जाम्पल क्लास में देते थे मधुबन वालों को, दादा का देखना हो तो दादा का अलमारी खोल के देखो कपड़ा कैसा रहता था, कितना सिस्टमेटिक रहता था। इस तरह दादा हरेक, दादा का हर कर्म भी एक्यूरेट रहता था, बाबा देख रहा है, ये उनकी नित्य जीवन की स्लोगन था। बाबा हमारे साथ बैठा है, बाबा क्या समझेगा, ये उनका पक्का स्लोगन था। इसलिए वो हर एक्टिंग को, हर एक्ट को परफेक्ट करता था बाबा, दादा विश्वरतन। इसलिए इनसे हम, या बाबा से हम, बाबा को भी देखते थे ना, प्रैक्टिकल बाबा का हिस्ट्री में पढ़ो, बाबा का क्या था, दादियों का क्या था, दादी जानकी का देखो प्रैक्टिकल, जब दादी इतना तबियत होते भी अमृत वेला योग कराने के लिए, इतना होते भी क्लास, शाम का क्लास कराने के लिए। एक बार हमने प्रैक्टिकल देखा, इंद्रप्रस्थ में दादी बैठी थी, उस एक घंटे तक कुछ पता नहीं था दादी आएगी या नहीं, मगर एक घंटे के बाद दादी ने, अभी वहां हम गए ही थे तो दादी ने कहा अभी चलना है ओम शांति भवन क्लास में, दादी आपका तबियत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बाबा कराएगा, बाबा सेवा करा लेगा। हम देखते हैं, हम ऐसे दादियों का एग्जाम्पल लेकर हम भी ऐसे बनना है। इतना ही नहीं, जगदीश भाई का देखो, अभी कितने लोग हैं, कितना दादियां हैं, कितने महारतियां हैं, उन सब का एग्जाम्पल देखे तो हमको एक ही समझ में आता है कि हम एक्टर हैं, हमारा एक्टिंग को सारा संसार देख रहा है। ये अंडरलाइन करना होगा, ऐसे सदा अनुभव होते रहे कि सर्वशक्तिमान परमात्मा से निरंतर मुझ आत्मा में शक्तियां बढ़ते जा रहे हैं। क्या क्या सुना, ऐसे सदा अनुभव होता रहे कि हम अभी सर्वशक्तिमान बाप से, परम पिता परमात्मा से निरंतर मुझे आत्मा में शक्तियां बढ़ते जा रही है। ये अनुभव होता है, होता है, जरूर होता है, क्यों नहीं होता है, जब ब्राह्मण बच्चे बने बाप साथ है तो क्यों नहीं अनुभव होता है। मगर इसके लिए भी हमको क्या अटेंशन रखना होगा, क्या पुरुषार्थ करना होगा, यही पुरुषार्थ करना होगा। पहला नंबर का पुरुषार्थ है, ग्लोब पर बैठा हूं, ग्लोब पर बैठकर बाबा की साकाश लेकर पूरा विश्व को मैं साकाश दे रहा हूं। करते हैं ना ये अनुभूति, हाँ कर रहे, जरूर करते हैं, क्यों नहीं करते है? इसलिए ये प्रैक्टिस जितना होता रहेगा उतना हमको अंदर में क्या होगा, क्या होगा सोचो जरा, हमारे अंदर खुशी होगा। क्योंकि किसी को भी कुछ दो तो हमको खुशी होता कि नहीं होता है? होता है। इसी तरह हम ग्लोब में बैठ, ग्लोब के ऊपर बैठकर बाबा से शक्तियों का किरणें लेकर संसार को दे रहे हैं, पूरा विश्व को दे रहे हैं। अभी ये स्थिति इस समय बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है, अभी ये जो समय चल रहा है, महामारी का समय जो चल रहा है, ये कोरोना वायरस का जो चल रहा है, लोगों को शांति की अनुभूति के लिए, शक्तियों की अनुभूति के लिए विश्व के गोले पर बैठकर हम शक्तियों को ध्यान दिए, उनको शांति का महसूस कराए। ऐसे ही हम दूसरी अभ्यास चाहिए, पांचों स्वरूपों का, बाबा ने हमको कहा पांचों स्वरूपों का जानते हो ना, एक एक स्वरूप को एक मिनट, एक दिन एक मिनट, दूसरे दिन दो मिनट, एक स्वरूप को तीन मिनट, ऐसा एक एक स्वरूप को एक एक घंटे में तीन तीन मिनट, चार चार मिनट ऐसे बढ़ाते हुए वो स्वरूपों में इमर्ज हो जाओ। अभी अभी निराकार स्थिति में, अभी अभी देवता स्वरूप में, देवता स्वरूप में सवेरे से इमर्ज करो। सत्युग में हम क्या करते, सवेरे उठते कैसे थे? पंछियों के आवाज से उठते थे। उठते क्या करते थे? वहां ड्राइंग करते, चित्र निकालते। कितने दास दासियां हमको रहते हैं, हमारा पल्लू उठाने के लिए भी दास दासियां होते। ऐसे उस सीन को इमर्ज कर उसमें खो जाओ। आप कोई आवाज स्थिति को दूसरा आपकी चेहरा देखते ही ये कोई अलौकिक अनुभूति कर रहा है ये महसूस हो जाए, उनको ये दिखाई पड़े आपके चेहरे से, आपके आंखों से, ये कोई अलौकिक अनुभूति में खो गया। इसी तरह तीसरी है परिस्थापन की। क्योंकि परिस्थापन की क्यों जरूरी है इस समय? क्योंकि यहां आप इंडिया में बैठकर भी देश विदेश में जाकर उन आत्माओं को सकाश देने की, सकाश कब दे सकेंगे? जब वो परिस्थापन की अनुभूति हमको हो। परिस्थापन की भी अनुभूति कब हो सकती है? जब हमारे स्थूल में किसी प्रकार की भी रिश्ता ना हो। ये नहीं उससे तोड़ दो, ऐसा भी नहीं है, उससे तोड़ निभाना है, वो तो है, राइट है, मगर हमारा स्थूल देह से भी रिश्ता ना हो। इसका अर्थ है कि बाबा ने हमको क्लियर बताया, आप आत्मा हो, एक चैतन्य शक्ति हो, ये स्मृति अंदर टपकता रहे, तब फरिश्ता बन सकते हैं। फरिश्ता अभी हमारा संबंध, सगे संबंध सब है, मगर उनसे ये नहीं हम फरिश्ता है, हमारे कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं। रिश्ता है, रिश्ता रहते हुए भी क्या है, हम फरिश्ते हैं। इसलिए फरिश्तापन के अभ्यास के लिए हम विशेष आत्मिक स्मृति का बढ़ाना होगा। क्योंकि हम आपको सिंपल बातों में मैं बताता हूं, हम आत्मा है, हम रोज दूसरों को सुनाते हैं। क्या आत्मा का जो शांति का या कोई भी गुण का हमको इतना महसूस होता है? या यहां से वहां हम चल के जा रहे हैं, मैं आत्मा इन पांवों द्वारा जा रहा हूं, यह स्मृति रहती है? मैं आत्मा इन आत्मा को देख के बात कर रहा हूं, यह स्मृति आती है? ये अभ्यास को बढ़ाना होगा। इसलिए हमको ये अभ्यास जितना बढ़ाएंगे उतना दूसरों को भी ये महसूस होगा। फिर चौथा, देवता स्वरूप की, जैसा हमने कहा ना पांचों स्वरूपों में देवता स्वरूप की, जितना जितना हम जैसा ब्रह्मा बाबा को देखते थे, ब्रह्मा बाबा का जो हिस्ट्री में सुना था, बाबा जब क्लास कराता था उस समय कृष्ण का चित्र को देखकर क्या करता था, खगी मारता था, मैं मिचनु कृष्ण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा। उसको देख के हमको क्या प्रेरणा मिलती है, उसको सुनकर क्या प्रेरणा मिलती है? वही प्रेरणा मिलती है कि हम जाके फिर देवता स्वरूप में ऐसी दैवी गुण वाला देवात्मा बनेंगे। इसके लिए अभी अभी आकारी स्वरूप, अभी अभी निराकारी स्वरूप, अभी अभी देवता स्वरूप, इनका प्रैक्टिस रोज करते रहना है। करते रहो तो फिर हमारा जो देवता स्वरूप की जो है हमारे अंदर दैवी गुणों का आभास होगा। कई बार सोचते हैं क्या हमारे अंदर वो गुण है या नहीं है? है, जैसा हम गीता में सुनाया है ना, आग के ऊपर राख आने से वो आग दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह हम अज्ञान अंधकार के इसमें पड़े हुए हैं, हमारे संशय में पड़े हुए हैं। हम ब्राह्मण बने, सचमुच वो देवताई गुण हमारे अंदर है, ये स्मृति लाओ। अभी अभी यह ब्राह्मण, अभी अभी फिर देवता, देवता स्वरूप में कदम रखे कि रखे ये महसूस हो। ये महसूस तब होगा हम इसको आकारी निराकारी साकारी स्वरूप का बार बार प्रैक्टिस करना होगा। इसलिए मुरली के समय जब बाबा का हर महावाक्य मेरे लिए है ऐसे समझकर सुनो तो वो मुरली हमारे लिए आचरण में सहज आती जाएगी। क्या सुना? मुरली के समय, क्योंकि ये सब स्वरूपों का कब अनुभव कर सकेंगे, ये सब स्वरूपों के लिए मुरली की एक एक महावाक्य को कैसा समझना चाहिए, चतुर्क पक्षी जैसा, जैसा बाबा है साकार बाबा जब मुरली सुनाने आता था हिस्ट्री हॉल में मुरली सुनाता था, मम्मा क्या करती थी, पहले मम्मा जब मुरली सुनाई बाबा जैसे ही आया संदल को थोड़ा सा ऐसा मोड़ के बाबा के तरफ मुंह ऐसा करके बैठ जाती थी, जैसे कि वो कुछ मिल रहा, किसी को कोई चीज मिलने वाला है तो उसका क्या होता है, मुकड़ा खिल जाता है और उसके तरफ ही देखते रहेंगे। जैसा हम आजकल देखते हैं ना, वो जो किसी के शादी होने वाला है वो कुमारी को बताएंगे आपका पति ऐसा है, ये काम करता है, इतना पैसा कमाता है, बस उसका क्या होगा, उसका मन सारा उसी के ऊपर चले जाएगा, ये कमाएगा, ये खिलाएगा, ऐसा रहेगा, उसका बिल्डिंग ऐसा है, ये है वो है, ये सारा बुद्धि उसके तरफ। मगर यहाँ बाबा ने हमको मुरलियों में क्या समझाया, एक एक महावाक्य लाखों रुपए की है, लाखों रुपए क्या अनगिनित पद्मों अनगिनित है, इसलिए एक महावाक्य भी मिस ना हो इसके लिए मुरली की एक एक महावाक्य को आचरण रूप में लाना होगा। मेरे को याद है मैं जब ज्ञान में आया, शुरू शुरू में ज्ञान में आने के बाद एक अव्यक्त मुरली था, अव्यक्त मुरली पढ़ा मैंने, कुमार मानव सदा कंबाइंड, अकेला नहीं, हाथों से भोजन बनाकर बाबा को भोग लगाने वाला, ये बहुत मेरे को पॉइंट ऐसे बुद्धि में घुस गया कि मैं कुछ भी हो जाए आज से मैं शुरू करूं भोजन अपने हाथ से बनाना। मगर लौकिक में बहुत ही एंटी थे, कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, भाभी थी भाई था, वो बोला हम जब तक है आपको हाथ से भोजन बनाने नहीं देंगे, इसीलिए वो ना कर दिया। तो फिर माता पिता को पता चला, वो लोगों ने बोला भले आओ बनाओ, बनाया पाया और भोग लगाया। क्योंकि ये क्या हुआ, बाबा की एक महावाक्य को हम धारण करने से अपना लाइफ ही, कुमार का लाइफ ही चेंज हो गया। क्योंकि कुमार का लाइफ का फाउंडेशन क्या है, कान पान है, कान पान यदि नहीं ठीक होगा, बाबा के श्रीमत अनुसार नहीं रहेगा तो वो इफेक्ट पड़ जाएगा हमारा लाइफ में। इतना ही नहीं, मेरे को याद आता है रतनबेन दादी ने एक बार हमको सुनाया, दादी को हम पूछा दादी आप लोग बाबा का मुरली चलने के बाद क्या करते थे, बाबा का मुरली चलने के बाद वो लोग एक ग्रुप चार पांच छह का इकट्ठा बैठ के उसको चिंतन करते थे, बाबा का आज बाबा ने क्या कहा, हमको क्या करना है, ये सोच, ये ग्रुप बनकर वो उसका चिंतन कर वो अपना लाइफ में कौन सी ऐसी बात है धारण करने की, उसको लेते थे, उसको लिखते थे। दादी कहते थे हम अमृत वेला क्या योग किया वो भी लिखते थे, बाबा ने आज मुरली में क्या सुनाया दूसरों को क्या सुनाना है वो भी लिखते थे। माना ये बात मेरे कहने की बात है कि बार बार मुरली को जितना उसके डेप्थ के अंदर जाओ, उसको चर्चा करो, जिसकी मुरली की चिंतन करने का अभ्यास पड़ जाएगा उसका क्या होगा, स्वतः ही मुरली का महावाक्यों का, क्योंकि मुरली हमारा क्या है, मुरली हमारी एक क्या, हमारा जो प्राण समझो या मुरली हमारी श्वास समझो। क्योंकि याद है ना जब दादियां बंधन में थी चिमनी से मुरली लिखकर डालते थे, मुरली बेचते थे उनको, वही मुरली आज ये बड़े बड़े दादियां बनी है। कि अभी हमको बाबा ने इतना, हमको जो अभी मीडिया ने इतना सुविधा दिया, मुरली एक दिन पहले ही मिल जाती तो फिर हमारा स्थिति ये समय से पहले तैयार हो सकती है। उस समय तो उनको मुरली मिलना इतना पीछे का मिलता था, अभी कई दिन तक तो शुरू में मुरली 15 दिन का लेट जाता था, अभी तो एडवांस मुरलिया सेंटर पे पहुंच जाती है। मीडिया की साधन तो इतना अच्छा मिला है, मगर हमारा स्थिति की साधन कहां तक प्रगति बनाई या प्रगति हुआ, जरा सोचो। मुरली की धोराते रहना है, आपस में चर्चा करते रहना है। जिस मुरली की चिंतन करने से हमारे अंदर क्या होगा, खजाना हो जाएगा, वो मुरली अपना हो जाएगा, वो पॉइंट अपना हो जाएगा। कभी भी कोई भी परिस्थिति आवे, तुरंत वो पॉइंट स्मृति में आने से वो परिस्थिति के ऊपर क्या करेंगे, क्या करेंगे, सहज विजय पाएंगे, व्यर्थ चिंतन नहीं चलेगा। आज बाबा ने कहा भाई आज याद की यात्रा में दौड़ ही लगाओ। क्या सचमुच आज सारा दिन में मैं याद की यात्रा में दौड़ी लगाया, कितना समय याद किया, एक छोटी सी कागज पे नोट कर लो। इसी तरह हम कितना भी पुरुषार्थ करने में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुरली के डेथ में जाओ, मुरली की चिंतन करो। जैसा हम देखते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सचिन भाई को आज वहां क्लास कराया, फिर दोपहर में कहा अंग्रेजों का क्लास कराया, रात को फिर हमारे पास क्लास करा रहा, सवेरे फिर आके फिर वही, रात को कब सोया कब उठा क्या पता नहीं। इस प्रकार वो हरेक की लक्ष्य होता है, लक्ष्य के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं। लक्ष्य हमारा होगा तो हम स्वतः ही आगे बढ़ते जाएंगे। दादियों के अनुभूतियों का क्लास सुनना और उसका अनुभव करना, कैसे दादियों ने अपना जीवन को निरंतर तपस्वी बनाई, उस तरह हमको ऐसा करना होगा। सुना ना, 14 साल तपस्या में थे दादियों ने, ये मेरे को हिस्ट्री में पढ़ा था, दादियों ने प्रैक्टिस किया, हम चतुर्भुज है, वो उनको चलते फिरते ये महसूस होता था हम चतुर्भुज है, चतुर्भुज होके चल रहे है साधारण देख रहे वही है, मगर उनकी अनुभूति जो इंटरनली जो आंतरिक स्थिति है, इंटेलेक्ट के ऊपर ऐसे प्रभाव पड़ा था, ऐसी तपस्या का अनुभूति हुआ था, बाबा साथ में था वो अनुभूति कराया। इसी तरह दादियों के एक एक अनुभव के क्लासेस सुनकर उस क्लासेस को दादियों ने कैसे तपस्या किया, क्या अनुभव किया, इसी तरह हम अनुभव कर दूसरों को ऐसी अनुभव कराना होगा। कुछ समय एकांत के लिए भी निकालना चाहिए, अपने आप से क्या करना है, बातें करना है। सचमुच बाबा हमको अभी ये समय दिया है, हम एकांत में बैठकर अपने आप से बात करें, क्या आज का दिन जो बीता मैंने ब्राह्मण जीवन में स्वयं को कितना बदला है, और मेरे में अभी भी कोई भी कमी तो नहीं है, क्या क्या कमियां है, कौन सी ऐसी पुरुषार्थ करना है। सोचे तो अपने आप अपने सामने एक रील घूम जाएगा, क्योंकि चाहते तो सब कुछ है, कोई ऐसा नहीं है पुरुषार्थ नहीं चाहता है, चाहता तो है, मगर पुरुषार्थ के लिए अभी हमारा जो ब्राह्मण जीवन के अंदर जो कमियां है, जो एकांत का अभ्यास है, एकांत के लिए जरूर कुछ ना कुछ समय निकालना होगा। ऐसे नहीं यहाँ बैठे हमको टाइम ही नहीं है एकांत के लिए निकालने के लिए, या चित पे जाओ या प्रकृति के नजदीक जाओ तो अपने एकांत का समय हो जाएगा, उसके साथ साथ अपने अंदर झांकने का समय है। अभी यह समय है अपने अंदर झांक कर हमको सदा ऐसी स्थिति बनाना होगा, ऐसी पावरफुल स्थिति बनाना होगा। सदा याद रखना है कि बाबा हमसे कोई विशेष कार्य कराना चाहता है, इसलिए मुझे अपने विशेषताओं को जानकर कार्य में लगाना है, और दूसरों को भी दूसरों की विशेषताओं को वर्णन करना है, देखना है। बाबा हमारे चाहता है, बाबा का बच्चा बना मना बाबा कुछ तो विशेषता हमारे अंदर देखा होगा ना, ये स्मृति आती है जरूर, कुछ तो हमारे अंदर विशेषता है। बाबा ने इतना तक कहा, 1000 लास्ट दाना भी उसके अंदर भी कोई विशेषता है। जब विशेषता की चश्मा पहनकर विशेषता को देखेंगे तो वो विशेषता दिखाई पड़ेगा, मगर विशेषता को हम अपने जीवन में धारण करेंगे, बाबा जो हमारे साथ कराना चाहता है, हमको ऐसा वरदानी मूरत बनाना चाहता है, वो हम बन सकते, मगर अंडरलाइन हमारा विशेषताओं को देखना होगा, विशेषताओं को देखकर विशेषताओं को बाबा के कार्य में लगाना होगा। मैं दैवी कुल की महान आत्मा हूँ, इसलिए देखना है कि दिन प्रतिदिन मेरे में दैवी गुण आ रहे या नहीं। इसके लिए वो अपने ऊपर पूरी नजर रखना होगा, जैसा मैंने शुरू में कहा, बार बार अभ्यास करने होगा। मैं दैवी कुल का आत्मा हूँ, आत्मा है, हम दैवी कुल के हैं, क्योंकि संगम युग में ब्राह्मण बने ही है, जरूर दैवी कुल में आएंगे आएंगे, मगर दैवी कुल का आत्मा हूँ, दैवी गुण आ रहे ऊपर, जो अटेंशन रखना होगा, नजर रखना होगा अपने ऊपर। हम दैवी कुल आत्मा होके ऐसा कर्म करेंगे तो हमारा ब्राह्मण जीवन का साथ क्या करते हैं, ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे ना, हमारा ये ब्राह्मण है क्या, ऐसा कर्म करता है, ये बोलेंगे ना लोग, जरूर बोलेंगे। इसलिए हम दैवी कुल का होकर हमारे अंदर दैवी गुणों का आभास ना हो, हम दैवी गुणों का नजर ना हो तो कैसे हो सकता है। इसलिए बार बार हम चेक करना होगा कि हमारे अंदर हमारे कर्म में दैवी गुण आते जा रहे। सारा दिन में थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर बाबा के बताए हुए ड्रिल करते रहना है, ताकि हम स्वयं की निरंतर योगी की अवस्था बना सके। क्या करना है, सारा दिन में बाबा की जो मैं सोचता हूँ, अभी अव्यक्त मुरली में पिछले साल दो साल से बाबा ने 16-17 ड्रिल बताया है, उस ड्रिलों को बार बार हम सारा दिन में, या मैं आत्मा हूँ ये नहीं, ये ड्रिलों को अभ्यास करने से वो आत्मा का अनुभूति तो स्वतः ही हो जाती है। इसलिए बाबा विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि हम ये ड्रिलों का बार बार एक एक घंटे में एक बार, ये दिन ये ड्रिल, दूसरा दिन दूसरा ड्रिल, तीसरा दिन तीसरा ड्रिल, इस प्रकार हम एक एक ड्रिल को परफेक्ट अभ्यासी बन जावे, इसका अनुभूति करते रहे। ओम शांति।